نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی میں ہم اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پیچھے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح دست درازیوں کی اور آپ کو بھی تکلیف دی, اور ساری تکلیفوں کے باوجود آپ اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے رہے. اب جب حالات اس قسم کے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا اقدامات اٹھائے کہ جس کی وجہ سے اس دور کے حالات پہ قابو پایا جا سکے. پیج نمبر 96 ہے بک کا. ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیا اقدامات اختیار کیے مشرکین کی ان تکلیفوں کے جواب میں. تو سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا, اور آپ بھی سب غور سے سنیں گے, اور آج بھی کبھی بھی کہیں حالات مسلمانوں پہ خراب ہوں گے تو اسی اسٹریٹجی پہ عمل کیا جائے گا. اور وہ کیا کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم کیا. ایک صحابی تھے ارقم بن ابی ارقم, قبیلہ مخزوم سے تھے, مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے اسلام کا بھی بہت لوگوں کو نہیں پتا تھا. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا گھر تھوڑا سا دور تھا, لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان جہاں جمع ہوں گے. آپ نے ان کے گھر کو چوز کیا اور صحابہ کے ساتھ یہاں جمع ہوتے, ایک قسم کا خفیہ سیشن ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی جتنی آیتیں آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی ہوتی صحابہ کو بتاتے, وہاں ان کے تزکیہ سیشنز ہوتے, ان کو کتاب حکمت سکھاتے, اور خاص طور پہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اسٹرینتھ ملتی ہے. جب سب لوگ کسی بھی کامن تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو بیٹھ کے اپنا دکھ سکھ شیئر کر لیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ہمت حوصلہ بھی آ جاتا تھا اور ڈھارس بھی ملتی تھی, تربیت بھی ہوتی تھی, اور اس طرح سے مسلمانوں کو ایک مقام مل گیا. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے مرکز بڑا ضروری ہے. مرکز کو آپ ادارہ کہہ لیں, بلڈنگ کہہ لیں, درخت کے نیچے چھپر ڈال کر بیٹھنا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن مرکز سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے دین کا کام کر سکے. دوسرا قدم آپ نے جو اٹھایا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. لیکن یہ فیصلہ آپ نے پوری تحقیق کرنے کے بعد کیا. آپ کو پتہ چلا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, اور مسلمان حبشہ ہجرت کر جائے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ حبشہ وہی لفظ ہے جس سے آج ہمارے ہاں حبشی مشہور ہے. حبشی لوگ کالے ہوتے ہیں لیکن دل گورے تھے. ابو لہب بڑا خوبصورت تھا, ابو جہل بڑا خوبصورت تھا لیکن اس کا دل کالا تھا. اللہ کے نبی نے یہاں سے رنگ اور نسل کے فرق کو مٹا دیا, اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو جا سکے وہ چپکے سے حبشہ چلا جائے. چنانچہ 5 نبوی میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں, اور اس کے سردار, اس قافلے کے سردار جو تھے حضرت عثمان بن عفان بھی تھے, اور اس وقت ان کی زوجیت میں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ تھی, وہ بھی ان کے ساتھ تھیں. اللہ کے نبی نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. رات کے اندھیرے میں نکلے, جدہ کی طرف سے ہوتے ہوئے سمندر کے راستے سے یہ ایک تجارتی جہاز میں سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے. قریش کو پتہ کب چلا, جب یہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے. کوشش کی لیکن نہ پکڑ سکے تو غصہ بھی آیا, غضب بھی بھڑکا, لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس طرح مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. ایک واقعہ ہوا اس دوران, اور وہ کیا تھا کہ اس ہجرت کے تقریباً 2 مہینے کے بعد رمضان سن 5 نبوی میں اللہ کے نبی مسجد حرام میں تشریف لائے. کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے, ان میں ان کے سردار بھی تھے اور بڑے لوگ بھی تھے. اب آپ سوچیے حالات کتنے ٹسل والے ہیں نا, سٹریسڈ ہیں, لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑا, اور سورۃ نجم جو ابھی نازل ہوئی تھی اس کو سب کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. اور آپ خود سنیں گے سورۃ نجم کی تلاوت کہ اس کے اندر کس طریقے سے ردھم بھی اور خوبصورتی ہے. پیچھے آپ کو بات بتائی بھی تھی اس کے بارے میں. تو سورۃ نجم کی جب تلاوت شروع ہوئی اتنا خوبصورت کلام انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ بالکل مبہوت ہو گئے. इतना ज़्यादा उनके ऊपर इसका असर हुआ कि जब आखिरी आयतों में फसजुदू लिल्लाहि वाबुदू में सजदे की आयत आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया तो आपके साथ मुशरिकीन ने भी सजदा कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया सबने कर लिया, नतीजा क्या हुआ, खबर फैली कि सब मुसलमान हो गए हैं। सब ने सजदा किया सिवाय एक शख्स के, उमैया बिन खल्फ उसका नाम था। सजदा करने की बजाय एक मुट्ठी कंकरी ली और इस तरह अपने माथे के साथ लगा ली, कहने लगा मेरे लिए यही काफ़ी है। तकब्बुर था ना, तो किबर जिन सीनों में भरा होता है वो अल्लाह के आगे झुकते नहीं है, और इसको अल्लाह ताला ने इस तकब्बुर की ये सजा दी कि बदर के दिन फिर ये मारा गया। हबशा वालों को जब खबर पहुंची कि सब मुसलमान हो गए हैं, वापस आ गए, अभी मक्का के करीब ही थे, थोड़ा सा फासला बाकी था कि पता चला कि खबर झूठी थी, कुछ तो वापस चले गए और कुछ जो थे छुप छुपा कर मक्का में आए। अब ये दूसरी हिजरत हबशा करने में जो लोग कामयाब हो गए वो तो बच गए, लेकिन जो बाकी थे उनके ऊपर मक्का में कुरैश की सख्तियाँ और बढ़ गईं और उन्होंने मुसलमानों को और तकलीफ़ देनी शुरू की। गम क्या था कि मुसलमान जहाँ से बच के क्यों गए, और हबशा में उनको एक अच्छा सलूक हो रहा था, उनको ये सारी खबरें मिल रही थी कि उस बादशाह ने उनके साथ बहुत अच्छा मामला किया। चुनाचे जब दोबारा लोग हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उस दफ़ा 82 या 83 यानी 82 या 83 मर्द थे और 18 यानी 18 औरतें थीं, इन्होंने हिजरत की। ये हिजरत पहले से ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि पिछली दफ़ा तो पता ही नहीं था, लेकिन इस दफ़ा तो वो आप किए गए एक हरकत पे गौर कर रहे थे और मुसलमानों का छुपना मुश्किल था, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जिनको निकलना था वो निकल गए। जब मुसलमान चले गए तो कुरैश को असल में ये अपनी हार लगी, लिख लें कुरैश की ये पहली हार थी जो मुसलमानों के मुकाबले में उनको सहनी पड़ी कि हमारे होते हुए ये मुसलमान हमारे हाथों से क्यों निकल गए। बदला लेना चाहा, दिल में एक किस्म का गुस्सा और ग्रज भी था, तकलीफ़ थी कि हम पकड़ते हैं इनको। लिहाजा अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया नाम के दो लोग जो बड़े होशियार किस्म के थे, इनको हबशा भेजा और कहा कि जाओ बादशाह से कहकर इन लोगों को वापस लेकर आओ। एक पूरा प्लान था। पहुंचे वहां के पादरियों से मिले, उनको तोहफे तहाइफ पेश किए, कुछ दलाइल दिए, अपनी आमद का मकसद बताया और उनको कुछ रिश्वत देकर अपनी हिमायत के लिए तैयार किया कि जब हम बात करेंगे तो तुम हमारा साथ देना। इसके बाद निजाशी के पास आए, उसको भी बहुत सारे तोहफे पेश किए और आने का मकसद बयान किया कि बादशाह सलामत, आपके मुल्क में हमारे कुछ ना समझ नौजवान भाग आए हैं। हाईलाइट कर लें, मुआशरा किनको ना समझ कह रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे निभा रहा है, आज भी ऐसा ही होता है। कहने लगे कि इन्होंने अपनी कौम का दीन भी छोड़ दिया और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, देखिए कैसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कि चले अगर ये एक मुशरिक नहीं रहे तो अब ये ईसाई भी नहीं बने बल्कि एक नए दीन ईजाद कर लिया। आज भी देखिएगा जहाँ सच्चा दीन आएगा लोग यही कहेंगे कि ये नया दीन आ गया, हमने तो बाप दादा के वक्त से ये चीज़ें नहीं देखी थी। बस आप हमें इनको वापस करें। और साथ जज्बाती टच क्या दिया कि ये जवान है, यहाँ से पता चलता है कि यंगस्टर्स ने हिजरत की थी, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि जवान खून गर्म होता है, रिस्क ले लेता है। बूढ़े लोग रिवायात के पाबंद हो जाते हैं, रिस्क नहीं लेते, लेकिन यंगस्टर इस तरह के काम करते हैं। तो कहा कि हमें इनके बापों चचाओं और ख़ानदान के लोगों ने भेजा है कि आप इनको वापस कर दें, गोया कि ये हमारे भागे हुए कैदी हैं, आप इनको हमें दे दीजिए। अब ये बात करके वो तो मुतमइन थे कि बादशाह हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, और इन्होंने पादरियों को चूंकि पहले से तैयार किया हुआ था उन्होंने भी इस तरह की बात की कि इनकी हिमायत की जाए। लेकिन निजाशी बहुत अक्लमंद था, अल्लाह ने उसका सीना दूर रहकर खोल दिया, करीब रहने वालों के सीने ना खुल सके लेकिन दूर वाले का खुल गया। इसने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा जब तक के मैं मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू ना समझ लूँ। और ये एक बेहतरीन मामला है, हदीस में भी आता है कि दो लोगों के बीच में जब भी मामला करो, कोई सुलह का, कोई तलाक का, कोई रिश्ते नाते का, पहले दूसरे की भी सुन लो। एक जो कह रहा है वो तो सच्चा ही लगेगा, बाद दफा जो लोग रो रो के मजलूम बन के अपनी कहानी सुना रहे होते हैं वो बड़े जालिम भी होते हैं असल में। चुनाच इसने कहा कि मैं इनके बात करूंगा, क्या दीन है जरा इनकी बातें तो सुनो। जब इन्होंने बुलाया तो मुसलमानों की तरफ से जाफ़िर बिन अबू तालिब जो थे, ये जो हज़रत अली के भाई भी थे, ये आए और इन्होंने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। यह अमल की बात नोट कीजिएगा کہ زبان کا استعمال کتنا اہم ہے. اگر ایک بندہ 100% حق پر بھی ہو اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں بتا سکتا تو بالکل کند ہے. حضرت جعفر بادشاہ کے دربار میں ہیں, خوف تھا کہ ملک سے نکال دیے جائیں گے, ایسی کہ ہمارا ویزا کینسل کر دیا جائے گا. مذہبی طور پہ ایکسپلائٹیشن بھی تھی, اس ملک کے بادشاہ کے دین پہ بھی نہیں تھے, لیکن ان سارے حالات میں بھی سچ بولا. عمل کی بات ہے, کوئی حال ہو, مسلمان ویزا لینے جا رہا ہے, کسی ملک میں سیٹل ہو رہا ہے, کسی جگہ ٹیکس کا معاملہ ہے, جھوٹ نہیں بولنا, اس ملک کو بھی نقصان نہیں دینا, دھوکہ نہیں دینا. یہ تھی وہ تعلیمات جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی اس دور میں مسلمانوں کی عزت کرتے تھے, اور آج کے دور میں ہم خود اپنے حالات خود دیکھ سکتے ہیں. جھوٹے ویزے, جھوٹی باتیں, جھوٹے ڈاکیومنٹس, پاسپورٹ جیلی اور کیا کیا, اپنے ملکوں کو بدنام کر کے ہم دوسرے ملکوں میں آ کے اسائلم لے لیتے ہیں. انہوں نے ہر بات اپنی بتائی کہ بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے, بت پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, برائیاں کرتے, قرابت داریوں کو توڑتے تھے, پڑوسیوں سے سلوک برا تھا, طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. اتنے برے حالات تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا جس کا نسب بھی اچھا تھا, سچائی, امانت اور پاک دامنی بھی اس کی تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کی دعوت دی. پتھروں اور بتوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا, سچ بولنے, امانت ادا کرنے, قرابت چھوڑنے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. بے حیائی کے کاموں سے, جھوٹ بولنے سے, یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اور اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. نماز, زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سارے احکام بھی گنوائے, پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا, اس پر ایمان لائے, اس کی پیروی کی, اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کی پیروی کی یعنی اتباع کیا, چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, جو چیزیں اس نے حرام بتائیں اس کو حرام مانا, جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال مانا. بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے, اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹیں اور گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے ان کو پھر حلال سمجھیں. یہ تھا قصہ جس پہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے, زمین ہم پہ تنگ کر دی, ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے, اور ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی, آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سارے لفظ کیا بتا رہے ہیں, خوبصورت طرز بیان. دیکھیے, آپ کے دل میں 100 اچھے خیال ہیں نا, اگر آپ کی زبان نہیں چلتی تو آپ دعا کریں کہ رب اشرح لی صدری. کلام اور بیان کی قوت, اپنا مدعا دوسرے تک پہنچا دینا, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, دل سکون میں چلا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ خاص طور پہ عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, 100% حق پہ ہوتی ہیں لیکن اپنی سچائی پیش نہیں کر پاتی. بات شروع کی, رونا شروع, آنسو ہی, پھر اگلا کہتا ہے یا رو لو یا بات کر لو. تو یہاں سے اپنے لیے سیکھیں, کبھی زندگی میں کوئی معاملہ گھریلو سطح پہ ہو, سسرالی سطح پہ ہو, دنیا کے کسی فورم میں آپ کو کھڑا کیا جائے, اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنا عمل کیا. میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج کے مسلمان بھی یہ گواہی کسی فورم میں جا کے دے سکتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا, لیکن کیا کریں امریکہ والوں, ہم اس پہ عمل نہیں بس کر رہے آج کل. کیا کریں, بس ہم وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے. جس کے اندر عمل ہوتا ہے نا, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے ہاں یہ تھا, یہ کیا. اب بتائیے, اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھ گئے ہوئے تقریباً 100 لوگوں کو پناہ کی زیادہ ضرورت تھی, آج ہم مسلمانوں کے, تب تو دنیا میں ایک بھی مسلم ملک نہیں تھا. جاتے تو کدھر جاتے, واپس مکہ آنے تھے. آج ہم مسلمانوں کے پاس 100 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں, اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش کسی نہ کسی مسلمان ملک کا شہری بھی ہے. اس کے باوجود دیکھیے, غیر مسلم ملکوں میں پنپنے کے لیے کتنا جھوٹ سچ بولتے ہیں, اور کتنا بے عزت کرتے ہیں اپنے اسلام کو, اور کتنا ذلیل کرتے ہیں ہم اپنے دین کو, اور اپنے ملکوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی دکھا دکھا کے ہم وہاں کے ویزے سینکشن کرواتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیے, سچ بولیے, رہنا ہے تو سچ کے ساتھ رہیں, جانا ہے تو سچ کے ساتھ رہیں. جب غیروں کو یہ پتہ چلے گا نا کہ یہ مسلمان سچے ہیں, तो वो आपको शौक से अपने मुल्कों में बुलाएंगे, और अगर उनको पता चले झूठ बोल बोल के हमारे मुल्कों में आते हैं तो फिर वो आपसे अपनी मर्जियां मनवाएंगे। उनको पता है कि हमारे अंदर कोई बड़ी कशिश है कि ये आते हैं। और हजरत जाफर का ये कलाम बता रहा है कि जब बंदा सच बोलता है, हक पे होता है, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। बादशाह ने बातें सुनी, कहने लगा अच्छा कुछ कलाम तो सुनाओ। अब आप देखिए कि कलाम सुनाने के लिए हजरत जाफर सूरह फातिहा भी चूज कर सकते थे, वो नाजिल हो चुकी थी, सूरह मुद्दसिर कर लेते, सूरह शोरा की आयतें करते। कौन सी सूरह चूज की? सूरत मरियम, जिसके अकायद सरासर बादशाह के खिलाफ थे, क्योंकि बादशाह उस वक्त की क्रिश्चियनिटी के मुताबिक हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने वाला था। अब वो तो खत्म हो गया था, जो इन्नी अब्दुल्ला, जो ईसा का बचपन का कलाम था। जूं ही हजरत जाफर ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की, निजाशी रोया, इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और उसके दरबारी भी रोने लगे। इस वक्त हजरत जाफर का क्या ये कोई अकलमंदी का नुक्ता था? बिल्कुल अकलमंदी का था। मैं इसको बिल्कुल पर्सनली एक एक्सपीरियंस से गुजरी थी, तो मुझे वो बात याद आ गई। किसी एक ऐसी जगह पे मैं थी कि मेरे लिए बहुत गोल्डन चांस भी था कि मैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ जहाँ तक आमतौर पे दीन की बात नहीं पहुँचती, और उनको बताऊँ कि अगर अपने मुल्कों में अमन चैन चाहिए तो आज हम मुसलमानों का या लीडर्स का क्या किरदार होना चाहिए। लेकिन उसमें खौफ हो सकता है कि किसी एम्बेसडर की वाइफ किसी बड़े छोटे को बात बुरी भी लग सकती है, तो फिर मैं क्या करूं? अल्लाह जानता है। मैं जे उस दिन दर्स देने के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो ये थी कि मैं किसी से डरे झिझके बगैर जो मैसेज मुझे अपने दिल से उठता हुआ महसूस होता है ना, कि आज हम मुसलमानों को एक अच्छा पाकिस्तान बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने वही मैसेज दिया। हत्ता कि जब मैं वहाँ से उठी तो उस वहाँ उस महफिल में हमारे मुल्क की एम्बेसडर भी मौजूद थी। बाद में मेरे पास आई, कहने लगी कि वेरी आई ओपनिंग, आपका लेक्चर बड़ा आई ओपनिंग था और हमें इस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत है। बात सच थी तो मुझे तो कोई शर्म नहीं आई। और मैं कहती नहीं आज इनको ज़रा जन्नत की बातें सुना के आ जाऊं और मैं फजाइल और बातें, तो खुश होंगे मुझे आके फूल पेश करेंगे। और उन्होंने फूल पेश किए, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसको बेच के स्कूल के लिए डाल दें। यानी किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही नहीं रहती बंदे को। लोग जिन लोगों से हाथ मिलाने और उनसे तस्वीरें खिंचाने के लिए तड़पते हैं, आपके दिल में उसकी कोई तड़प ही नहीं, इतनी शान बेनियाजी। तो मुझे तो उस औरत ने कुछ नहीं कहा। जब पाकिस्तान का तराना लगा सब खड़े हो गए, मैं भी स्टेज पे थी, मुझे उन्होंने लड़की ने कहा कि तराना लगने लगा, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैं बैठी रही, पूरा वक्त मैं बैठी रही। मुझे पता था कूमु लिल्लाह ही काने तीन, कितना मारूफ रिवाज है हमारे मुल्क का के तराने पे खड़ा होना। हालांकि खड़ा होना चाहे आप नबी के नाम पे मिलाद में खड़े हो जाएं वो भी इबादत है, और आप नमाज में क्याम करते हैं और तराने में खड़े होते हैं। मैंने दिल में सोचा, मैंने तो अपना जब वो मुझे अल्लाह ने एक पासपोर्ट दिलवाया था, मैं तो उस वक्त भी नहीं खड़ी हुई, तो मैं आज क्यों खड़ी हूँ? मुझे किसी ने नहीं निकाला उस महफिल से, निकले आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, पाकिस्तान की आप सिंसियर नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि सच है। तो हमेशा याद रखें कि सच को आँच नहीं है, आप हक पे जम जाएं, फिर देखें उसके मज़े, और अल्लाह फिर आपको वो देगा जो आम दिनों में नहीं देता। ये जो हमने तोड़ा मोड़ा हुआ दीन निकाला हुआ है ना, एक बोनलेस किस्म का हड्डियों का ढांचा निकाल के लोगों की पसंद का इस्लाम पेश कर रहे हैं, इसकी वजह से हम जलील है आज। और खुश कोई नहीं है जिनको हम खुश करना चाहते हैं, सबको पता है कि ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए हमारी बातें मानने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हजरत जाफर बड़े सुकून से बात कर रहे, और निजाशी को सारी बात समझ आ गई, कहने लगा भाग जाओ, किसी के हाथ नहीं दूंगा। ना सिर्फ ये कि कुरैश के नुमाइंदों को उन्होंने कहा वापस चले जाओ, बल्कि उनके सारे तोहफे वापस कर दिए, कहा मैं रिश्वत देते हो हमें नहीं चाहिए, चले जाओ और ये लोग यहीं बैठे रहेंगे। अब आप देखिए कि बड़े बेइज्जत होके तेरे दर से हम निकले या तेरे कूचे से हम बड़े बेइज्जत होके निकले। जब निकले उनको लगा कि ये क्या हो, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई है। अब एक और तदबीर सोची, कहने लगे बादशाह सलामत ज़रा इनसे ये तो पूछे कि हज़रत ईसा के बारे में इनका क्या ख्याल है। अंदर से एक्सप्लाइटेशन क्या चाहिए कि ईसा को तो बादशाह जो है वो अल्लाह का बेटा आज के दौर में कह रहा होगा, तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं वो अल्लाह के नबी थे, तो इसने उनको कहा कि सुनाइए। हज़रत जाफर ने कहा कि बता देते हैं। आपने फिर वही बात कही जो कुरान की थी कि वो अल्लाह के रसूल, उसके बंदे और उसका रूह है जिसे कुमारी मरियम के जिस्म में डाल दिया गया, और वो अल्लाह का नबी था, बेटा नहीं है। अब ये कितनी बड़ी बात है, मुझे इस बात को पढ़ते हुए हमेशा वो हदीस याद आती है कि बेहतरीन जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना है। निजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाकर कहा कि कसम है अल्लाह की, जो कुछ तुमने ईसा के बारे में कहा उसमें इस एक तिनके के बराबर भी फ़र्क नहीं है। यानी वेरीफाई कर दिया मुसलमानों के नज़रिए को, कहा जाओ तुम मेरे मुल्क में आराम से रहो, खुशी मनाओ, जो तुम्हें गाली देगा इसको तावान लगाया जाएगा। नोट करें, यानी तुम्हें वर्बल प्रोसिक्यूट भी कोई करेगा, अगर तुम्हें ज़ुबान से भी कोई बुरा कहेगा तो हम उसको सजा देंगे। जो तुम्हें गाली देगा इस पर तावान लगाया जाएगा, जो तुम्हें गाली देगा इस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे सोने का पहाड़ मिले तो भी गवारा नहीं कि मैं तुम में से किसी को सताऊं। ये देखिए हक की पुकार है। क्या आपका दिल नहीं खुलता हक के लिए? जिंदगी के किसी मैदान में आप खड़े हैं, कोई अदालत है, घरेलू अदालत है, ससुराली अदालत है, सियासी अदालत है, सच बोलूंगी, कहना सच है, झूठ नहीं बोलना। आज हम मुसलमान इस नुक्ते पे अमल कर लें, कल वो निजाशी के बादशाह में जैसे इज्जत पा के निकले थे, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे लिए खुद जहाज भेजेंगी कि आओ हमारे मुल्क में रहो और इतने खूबसूरत एथिक्स और अखलाक हमें भी सिखाओ। या आज हम खुद मुश्किलात में पड़े हुए। बहरहाल नाकाम हुए, पहले ही जले हुए थे, वो कहते ना कि करेला और नीम चढ़ा, पहले ही दुख में थे, ऊपर से बेइज्जती हो गई। आप तो जो कर सकते थे वो क्या कर सकते थे कि जो मक्का में रहे हुए लोग थे उन पे और जुल्म कर दिया। यहाँ एक और अमल का नुक्ता नोट करें कि अल्लाह के नबी का ये कदम कितना हकीमाना था एक लीडर के तौर पे, कि कुछ को कहा तुम तो निकलो। यहाँ बहुत ही गहरा नुक्ता है आज के अमल के एतबार से। एक सूरत ये थी कि सबको मक्का में ही आप रहने देते, मार खाते पीते रोते धोते, कुछ मर जाते, कुछ बेचारे बीमार हो के आखिर में ख़त्म हो जाती कहानी, क्योंकि हालात साजगार नहीं थे। अल्लाह के नबी ने ये जो 70-80 लोगों को कहा ना जाओ, आप क्या चाहते थे, चलो हम सह रहे हैं ना तकलीफें, तुम बाकी जाओ यहाँ से, जाओ तुम बाहर निकल के काम करो, इस्लाम फैलाओ। देखिए इस्लाम कभी ना फैलता अगर मुसलमान एक कोल्लू का बैल बन के मक्का में बैठे रहते। इस ग्रुप को बाहर भेजना एक तो इनकी ज़हनी आसूदगी का ज़रिया बना कि चलो तुम क्यों मार खाते हो, तुम निकलो। दूसरा, आप चाहते थे कि इस्लाम अब ईसाइयों तक पहुंचे, निजाशी को पता चले, हबशा में जाए और एक खूबसूरत फूल आप कहीं भी छोड़ दे खुशबू देता है। इन चंद लोगों के वहां कुछ महीने रहने के साथ आपको होता है कि वहां इस्लाम शुरू हो गया। ये हमारे लिए अमल की बात है। सारे ही जो एक हालात में बैठे हुए तो कोई नहीं जी हम निबट रहे हैं, आप जाएं, आप जाके सुकून के साथ कोई काम करें, बाकी चीज़ों को हम समेट लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस फैसले में फिर बहुत सारी बरकत भी डाल दी। परेशान है कि ये अल्लाह के नबी अपने काम किए ही जा रहे हैं, ना इनको धमकियां पीछे कर रही हैं, ना लालच पीछे कर रहे हैं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ आपको जो एक दिखेगी ना, वो क्या है, इन हालात में जो आज के मुसलमानों को अपने दिल की तख्तियों पर लिख लेनी चाहिए कि अल्लाह के नबी ने टकराव नहीं किया, आपने लोगों को रिएक्शनरी नहीं बनाया। पूरे 13 साल मक्की दौर में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि मुसलमानों को कहीं जाकर किसी खाना काबा में गंदगी फेंकते हुए, किसी के बुत की टांग तोड़ते हुए, किसी के सर पे कुछ फेंकते हुए देखें, आप नहीं देखेंगे। ये है इस्लाम का मिजाज। आज हमने टकराव की पॉलिसी लेकर, टकराव समझते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्ट करो, इख्तलाफी बातें करो, ऐसे बयान दो, सियासी बयान दो, हम ये कर देंगे, अमेरिका मुर्दाबाद, फुलाना बुला, करना कराना कुछ नहीं, नारे लगा के जाते हैं, घर जाके इंडियन फिल्म देख के सोते हैं। हमारा आज ये हाल है, कोई ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था अभी हम थोड़े हैं, अभी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अभी इनको खाने दो मारें, ज़रा इनके अंदर मुश्किलात सह कर, ज़रा तकलीफ़ों को सहना तो आए, बर्दाश्त करेंगे इससे फ़ायदा होगा। लिहाजा आपने खामोशी इख्तियार की। बड़े बड़े वो सहाबी हैं इसमें जिन्होंने आगे बदर से लेके तबूक तक कई मार के अंजाम दिए, लेकिन मक्का में कोई तलवार नहीं उठी, बस खामोशी से रहे। आपके भी लिए ये अमल की बात है कि अभी आपका इल्म कच्चा है, अभी आपका इल्म पुख्ता नहीं है, आपके अमल में कमी है, तो हर वक्त जाके नारे ना लगाते रहा करें रिश्तेदारों में और दोस्तों में, बढ़के ना मारें, बस अपने अंदर गहराई लाएं, अपनी बुनियादें पक्की करें, अपने अंदर अमल आपके आएगा, आपकी बात में भी असर होगा। ये जो हम कहते हैं ना, लोग सुनते ही नहीं है, हमारे रिश्तेदारों को शौक ही नहीं है, मेरी सहेलियां तो सारी भटकी हुई हैं, देखिए उनको छोड़ें, पहले आप अपने आप को देखें। अल्लाह कभी असर नहीं डालेगा आपकी बात में अगर आपके अपने अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पुख्ता नहीं हुआ। जितना उनको कहना है ना, उससे ज्यादा पहले अपने आप को कहें, खुद को सुनाते जाएं, आपके अंदर अमल आएगा। ये हो नहीं सकता कि एक सच्चा मोमिन कहीं बैठा हो और लोग उससे इम्प्रेस ना हो, ये नामुमकिन है। जैसे यहाँ एक फूल खिला हो ना गुलाब का, तो मैं उसकी खुशबू रोक नहीं सकती आप तक पहुंचने से। इस तरह एक सच्चा मोमिन दुनिया के किसी कोने में, 7 समंदर पार जाके वो एक गिरता है ना बीच, वहां भी अल्लाह के हुक्म से उसकी वजह से फसलें लग जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर खुशबू नहीं रही आज। हम जड़ कटे हुए आर्टिफिशियल फूल हैं, नेकियां करते हैं, नमाजें रोजे भी हैं, अल्लाह के साथ मामला नहीं। और जुबान का इस्तेमाल तो आता ही कोई नहीं है, चेहरे के स्माइल से पहले ही जब हम एक लोगों को तबलीग की बात सुनाने लग जाएंगे, वो कहेगा पीछे हटो, मुंह से ना भी के अंदर से कहेगा मैं तुम्हें क्या समझती हूँ, अपना हाल तो देखो, अपने हालात तो देखो। तो खुद को पिघलाएं, कोई नहीं सुनता ना आपकी, खुद को सुनाए। जब जिस दिन कोई आपकी बात ना सुने, उस दिन आके घर आके एक और नेकी की नीयत करें, अपनी एक और बुराई छोड़ें, अपना और तस्किया करें, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपका वजन बढ़ाएगा। ईमान का वजन है और अमल सवाले का वजन है। फिर अल्लाह ताला गैब से आपकी बात में इतना असर डाल देगा कि लोग आपकी बात को झुटला नहीं सकते, माने ना माने, लेकिन आपकी बात दिल में उनके ज़रूर जाएगी और उनका एहसास होगा। तो बहरहाल मक्का के हालात तो मुश्किल थे, उन्होंने तो चाहा कि इस्लाम को ख़त्म करें, नबी सल्लम को ख़त्म करें, लेकिन उनकी कोई बात पूरी नहीं होगी। बिल आखिर फिर क्या हुआ, अल्लाह के नबी के कत्ल की कोशिशें शुरू हो गई।